சித்தாணம் நமோ ஆயரியாணம் நமோ வஜ்ஜாயாணம் நமோ லோயே சவ்வுசாஹூணம் மங்களம் பகவானி வீரோ மங்களம் கோதிமோகணி மங்களம் குந்த குந்தாரியோ ஜெயந்த தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாணிகாரிகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் நம சமய சாராய ஸ்வானுபூத்யா சகாசிதி சிஸ்வபாவாய பாவாய சர்வபாவாந்தரச்சிதே வந்தித்து சௌவசித்தே தூமச்சலமணோவயம் கதிம் பத்தே போச்சாமி சமய பாஹுடு மினிமோஷுத் கேவலி பணிதம். அபி ஹம் சபி லோகோனே பூஜ்ய குருதேவ் ஸ்ரீ கா மகாமங்கள்மய பிரவச்சன் கா லாப் லியா. ஆஜ் குருதேவ் ஸ்ரீ நே பிரவச்சன் மே சமயசார பரமாகம் கி சாத்வீ காதா கோ யாத் கியா தா. பஹத் கஜப் கா விவேச்சன் ஹை ஓர் மே காஸ் தோர் சே ஆப் லோகோ கோ போலுங்கா கி இஸ் சாத்வீ காதா கா ஜோ பாவார்த் ஹை பண்டித் ஜி சாஹப் கா 19வீ பார் கா இஸ் பாவார்த் கா பிரவச்சன் ஆப் சுனே. குருதேவ் குத் போல்தே ஏசா ஸ்பஷ்டீகரண் அத்புத் பஹலி பார். கை கை பிரவச்சனோ மே 19வீ பார் கே பிரவச்சனோ மே குருதேவ் நே ஏசா போலா கி யே பாத் பஹலி பார் இத்னி ஸ்பஷ்ட ஓர் ஆயி ஹை. உஸ்கா காரண் ஹை கி ஜேசே ஜேசே ஜீவோ கி யோக்யதா பக்தி ஜாதி ஹை ஓர் ஜ்ஞானி கி ஜ்ஞான பரிணதி பி கஹரி கஹரி ஹோதி ஜாதி ஹை ஓர் சமயசார கே உஸ் 19வீ பார் கே பிரவச்சன் மே தோ குருதேவ் நே ஏக் பார் யே பி போலா கி பஸ் அப் யே தோ அந்திம் பார் ஹை யே குருதேவ் ஸ்ரீ நே போலா ஹை. டீக் ஹை தோ ஜப் மனே இஸ்கா மத்லப் க்யா கி உன்கோ ஜப் யே லகா கி அபி அப் யே அந்திம் பார் பிரவச்சன் ஹை தோ ஜோ குச் தேனா பாக்கி ரஹ கயா ஹோ பிச்லே பிரவச்சனோ மே வோ சப் குச் குருதேவ் அப்னே கோ दे उन्होंने अपने को दे दिया. माने दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भेद को जानने से राग नहीं होता, लेकिन तू रागी प्राणी है इसलिए राग होता है. समझ में आया? भेद को जानने से राग नहीं होता, क्योंकि जानना तो ज्ञान का स्वभाव है. तो भेद को जाने अगर उससे राग हो तो फिर केवली को भी राग होना चाहिए. लेकिन हम रागी हैं, तो रागी हैं तो रागी को भेद को जानने से राग उत्पन्न होता है. तो यानी कमजोरी किसकी है? और राग आज दो तरह के राग की चर्चा की थी. कौन कौन से दो तरह की राग की चर्चा की थी? हाँ, एक था अज्ञानमय राग और एक था अस्थिरतामय राग. दो दो तरह के राग की चर्चा की ना. तो अज्ञानमय राग किसे कहा उन्होंने? मिथ्यात्व सहित जो राग होता है, स्वरूप को भूल करके पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट पना मान करके जो राग द्वेष होता है, अथवा पर द्रव्य मुझे राग कराते हैं, अथवा भेद को जानता हूं इसलिए मुझे राग होता है, इस तरह जो मिथ्या बुद्धि सहित का राग है उस राग को बोलते हैं अज्ञानमय राग, और वो अनंत अनंत संसार का कारण है. सम्यक दर्शन हो गया, स्वरूप का बोध हो गया, उसके बाद भी राग आता है, क्योंकि वीतराग नहीं हुआ ना अभी, तो वीतराग नहीं हुआ तो राग आएगा. तो कहते हैं कि वो राग कमजोरी का राग है. कमजोरी का राग अनंत संसार का कारण नहीं है, लेकिन ध्यान देना, राग है वह आग है. और चाहे वो राग तीव्र राग हो और चाहे वो राग मंद राग हो, अपन लोग तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो तो तीव्र राग और मंद राग थोड़ा तो अंतर है. अपन लोग क्या कहते हैं, नहीं अंतर तो है, तीव्र राग और मंद राग अंतर तो है। तो मैंने कहा एक काम करना, एक साइड में नीम की लकड़ी जला के रखना और दूसरी साइड में चंदन की लकड़ी जला के रखना और दोनों पे हाथ रख लेना, ठीक है। फिर बाद में जो रिजल्ट आवे उसमें हमें बताना कि नीम की लकड़ी से जले हुए हाथ में क्या अंतर है और चंदन की लकड़ी से जले हुए हाथ में क्या अंतर है। अरे जलन वो जलन है। तुम राग से भेद करने के बजाय राग में भेद करने में उलझ गए हो, आचार्य कहते हैं। जिस राग से भेद करना चाहिए उसके बदले राग में भेद करने लगा, ये अज्ञान का सबसे बड़ा चिन्ह है। बहुत सारी बातें आई थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गुरुदेव श्री के एक घंटे के प्रवचन में अपने को इतना मिल जाता है ना, कि अपनी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो ना तो रिचार्ज हो जाती है। आज कितनी गजब की बात आई थी, 6 महीने का आचार्य देव तेरे को टाइम देते हैं ना, 6 महीने के लिए अभ्यास तो कर। बहुत सारी बातें हैं। खैर अभी अपनी यहाँ पर जो गाथा चल रही है वो गाथा 320 नंबर की गाथा चल रही है, और 320 नंबर की गाथा में कल जैसा कि मैंने कहा था कि अपन 3-4 चीज़ों पर चर्चा करेंगे कल, है ना। तो ये पैराग्राफ अपन ले रहे थे यहाँ, सकाम अकाम निर्जरा से दो प्रकार की निर्जरा को भी जानता है, यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई थी। अब इसके बाद सर्व विशुद्ध पारणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादान भूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नैसे, कितने लंबे लंबे शब्द हैं आचार्य भगवान को। आज मैं गुरुदेव का देखो आप लोगों की आप लोग जानो, लेकिन जैसे मुझे ये गाथा चलानी है, मान लो ये चलनी है गाथा अपनी, तो इसका मैं गुरुदेव का प्रवचन सुन के आता हूं पहले। एक अभी मैं सुन रहा हूं 79 का प्रवचन, ठीक है। तो मतलब ये एक जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक अपन वो बात गुरुदेव के मुख से नहीं सुनेंगे तब तक अपने में निशंकता और निर्भयता नहीं आ सकती। और गुरुदेव के मुख से कोई बात अपन ने सुन ली तो फिर सारी दुनिया पलट जाए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है कि हमारे गुरुदेव ने बोला है ना कि ऐसा ही है, तो अब तीर्थंकर की वाणी बदले तो गुरुदेव की वाणी बदले, इतना अपने को दृढ़ होना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैं सुनता हूं ये कहकर के मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि आप मैं सुनता हूं, मैंने ये नहीं बताना है, मुझे आपको खाली ये कहना है कि अपने को भी सुन करके आना चाहिए, टाइम निकालना पड़ेगा, जीवन में निवृत्ति लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये निवृत्ति का मार्ग है, ठीक है ना। और अपने को स्वाध्याय के लिए तो कम से कम गुरुदेव बोलते थे 4-6 घंटे, क्या बोलते थे, 4-6 घंटे स्वाध्याय चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो यहां पर देखो अभी अपनी क्या बात चल रही है, यहां पर देखो सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक, ग्राहक का मतलब क्या होता है, ग्राहक माने उसको विषय करने वाला, किसको विषय करने वाला, तो कहते हैं सहज विशुद्ध विशेष सर्वता शुद्ध पारिणामिक परम भाव। और पारिणामिक परम भाव क्यों कहा था, कल ये भी अपन ने चर्चा की थी कि परम भाव परम शब्द क्यों लगाया, अरे पारिणामिक ही कह देते, तो कल मैंने चर्चा की थी और उसमें आपको लास्ट में 3 बिंदु बताए थे, उम्मीद करता हूं आपको याद हैं, याद हैं, मैं पूछता नहीं हूं कोई बात नहीं है, लेकिन याद है ना कि एक तो देखो 3 बातें क्यों कहा था कि पारिणामिक भाव तो सभी द्रव्यों में है, ठीक है, गुरुदेव ने भी बोला था 3-4 बार तो कहते हैं। अब वो अभी के प्रवचन में और 320 गाथा के प्रवचन में सुबह सुना तो गुरुदेव बोले उसमें कि 3-4 बार तो कहते हैं, एक ही बात को 3-4 बार तो कहते हैं, यानी गुरुदेव कितना पक्का करते थे, उनको पता था कि यहाँ से जाने के बाद ये भाई कहाँ जाने वाला है, ये बहनें कहाँ जाने वाली है, हमको सब पता है। तो वो कहते हैं उधार का काम रखो ही मत, यहीं का यहीं विषय को पक्का करा दो। और आप देखो गुरुदेव एक एक बात को 3-3, 4-4 बार, और लोगों को लगता है कि पुनरावृत्ति, गुरुदेव के प्रवचनों में पुनरावृत्ति बहुत आती है। मैंने कहा अपने दिमाग को जरा साफ कर लो, जितनी बार गुरुदेव उस बात को बोलते हैं, अगर एक बात को वो तीन बार प्रवचन में बोल रहे हैं तो तीनों बार में आपको और हमको कोई नया एंगल दे करके जा रहे हैं। गंभीरता से गुरुदेव के प्रवचन को सुनना पड़ेगा। चार बार बोल रहे हैं तो क्यों बोला गुरुदेव ने चार बार? गुरुदेव फालतू थे क्या? समय नहीं था गुरुदेव के पास, कोई काम नहीं था? और ज्ञानियों के पास कोई काम नहीं होता, ऐसा है क्या? अरे वो चार बार बोल रहे हैं तो एक तो उस बात पर उनको वजन देना है, जो बात वजन देने की है उस बात को वो चार बार बोलते हैं, तीन बार बोलते हैं, एक ही बात को तीन तीन चार चार बार रिपीट करते हैं और हर बार में कोई ना कोई नया एंगल अपने को वो देते हैं। समझ में आ गया? ज्ञानियों की अनंत करुणा है अपन लोगों पर। तो उन्होंने कहा कि पारनामिक भाव तो सभी द्रव्यों में है, तो उनसे न्यारा बताने के लिए जीव के जीव रूप जो जीव आत्मा है ना, उस आत्मा को उन्होंने कहा, जीव को कहा परम पारनामिक भाव। एक दूसरी बात क्या कही थी कल? दूसरी क्या कही थी कि पर्याय? अब तो याद आया है, याद आया क्या कहा था? कि जो पर्याय है ना, कि जिसको अपन औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशम भाव और औदयिक भाव कहते हैं, कि ये तो कर्म की अपेक्षा से नाम पड़ा, जिसमें कर्म का उपशम निमित्त हो उसे औपशमिक भाव कहते हैं, जिसमें कर्म का क्षय निमित्त हो उसे छायिक भाव कहते हैं, जिसमें कर्म का क्षयोपशम निमित्त हो उसे छायोपशमिक भाव कहते हैं, और जिसमें कर्म का उदय निमित्त हो उसे औदयिक भाव कहते हैं। ये तो निमित्त की ओर से उस पर्याय को नैमित्तिक रूप में ये नाम दिया। अब हम कहते हैं निमित्त की अपेक्षा से हम उस पर्याय को नहीं देखें, निमित्त की अपेक्षा को गौण कर दें तो वो कहते हैं हर पर्याय पारनामिक भाव है। ये जय धवला में आया है, मैंने कल भी बताया था, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी ये प्रकरण आया है, ठीक है, गुरुदेव श्री के प्रवचनों में तो आता ही है। और तीसरा कि आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं। कितने अनंत गुण है अच्छा बताओ? पिछली बार आया था जब भी मैंने बताया था, कितने अनंत? तो कहते अनंत हैं बस। अब अनंत की तो अनंत की क्या गणना करना है? अनंत कितने? कि जीव अनंत, जीव से अनंत गुणे पुद्गल, पुद्गल से अनंत गुणे तीन काल के समय, तीन काल के समय से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, और आकाश के प्रदेशों से भी अनंत गुणे एक द्रव्य के अंदर गुण है, यानी मुझ में इतने गुण हैं। अवगुण कितने बताओ? गुण तो इतने, अवगुण कितने? आत्मा में अवगुण एक भी नहीं, अवगुण एक भी नहीं और गुणों की संख्या का पार नहीं, इतने गुण हैं। और जैसे द्रव्य त्रिकाली है, जैसे द्रव्य कर्म की उदय उपशम क्षय क्षोपशम की अपेक्षा रहित निरपेक्ष भाव पारनामिक भाव है, ऐसे ही कहते हैं ये गुण भी पारनामिक भाव रूप है। एक एक गुण पारनामिक भाव रूप है, अनंत गुण हुए तो एक एक गुण पारनामिक भाव है। तो इन अनंत गुणों का जो अभेद पिंड है, इन अनंत गुणों को जो पी करके बैठा है, इन अनंत गुणों का जो एक छत्र स्वामी है, समझ में आ गया, तो उसको बोलते हैं परम पारनामिक भाव। गुणों को पारनामिक तो द्रव्य स्वभाव को क्या बोलेंगे? परम पारनामिक, बराबर है। तो ऐसा परम पारनामिक भाव को ग्रहण का ग्राहक शुद्ध उपादान भूत, ये त्रिकाली शुद्ध, देखो दो तरह के उपादान की चर्चा आई इसमें, पहले भी चर्चा आई थी, शुद्ध उपादान रूप से करता नहीं, कौन नहीं करता? तो उन्होंने कहा ज्ञान अथवा ज्ञान परिणत जीव, ये आया था ना, ठीक है, शुद्ध ज्ञान अथवा शुद्ध ज्ञान परिणत जीव शुद्ध उपादान रूप से करता नहीं। तो वहां जो उपादान शब्द आया था वो पर्याय के लिए आया था, क्यों? क्योंकि वो परिणमते की बात थी। समझ में आ गया? शब्द तो वही है लेकिन वाच्य का अंतर हो जाएगा, वहां परिणमते हुए की बात है, तो परिणमते हुए शुद्ध उपादान माने वो पर्याय रूप उपादान की बात है, और ये त्रिकाली उपादान की बात है ना। उपादान के दो प्रकार तो पड़े ही है ना अपन ने, उपादान के दो प्रकार, कौन कौन से दो प्रकार, ये सब याद करना पड़ेगा, बेसिक है ये सब, जैन दर्शन का इसके बिना पार नहीं पड़ेगा। कौन कौन से दो प्रकार के उपादान, कि एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान, फिर क्षणिक उपादान के दो भेद, एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय व्यय रूप उपादान, एक उत्तर क्षणवर्ती पर्याय माने तत्समय की योग्यता। वो कौन है तत्समय की योग्यता, कि वो तत्समय की योग्यता वो समर्थ उपादान कारण है, जिसके होने पर कार्य होता ही है और जिसके नहीं होने पर कभी कार्य नहीं होता, ठीक है। और निमित्त क्या है, कि निमित्त अत्यंत भिन्न पर पदार्थ, और गुरुदेव ने, लोग कहते हैं कि गुरुदेव ने निमित्त को उड़ाया, जबकि वास्तविकता क्या है कि निमित्त को कर्ता नहीं मानना, ये निमित्त को मानना है। जिसने निमित्त को कर्ता माना उसने तो वास्तव में निमित्त को माना ही नहीं, क्योंकि उसने तो निमित्त को उपादान मान लिया। समझ में आ गया, निमित्त को कर्ता मानने वाले हर समय निमित्त को सूली पर चढ़ा रहे हैं। एकमात्र हमारे गुरुदेव ऐसे हुए जिन्होंने निमित्त को अभय दान दिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अभय दान दिया। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, हमारे इंद्र भाई जी बैठे हैं यहां पे, इनके पिताजी का प्रसंग है। वो गुरुदेव श्री बोलते थे, केशु भाई नाम था ना, तो बोलते थे गुरुदेव कि किसी ने कहा कि साहब जब तुम निमित्त को कर्ता नहीं मानते हो और निमित्त से कुछ होता नहीं है ऐसा मानते हो तो बार बार सोनगढ़ क्यों जाते हो, जब निमित्त से कुछ होता ही नहीं। कैलाश सिंह जी पंडित जी ने भी लिखा था एक बार, जो अपने वो ना सिद्धांताचार्य, उन्होंने लिखा कि सोनगढ़ वाले निमित्त को नहीं मानते ऐसा नहीं है, लेकिन वे निमित्त को कर्ता नहीं मानते। गुरुदेव ने कहा बात बराबर छे, एमत छे, तो क्यों जाते हो तुम सोनगढ़, तो वो बोलते थे, गुरुदेव याद करते थे उनको, क्या बोलते थे, कि हम निमित्त से कुछ नहीं होता इस बात को दृढ़ करने के लिए सोनगढ़ जाते हैं। मैंने थोड़ा सा निमित्त का पक्ष में आने लगे ना, अरे भाई ठीक है निमित्त से, लेकिन निमित्त में कुछ तो होता होगा, कुछ तो असर होता होगा। जैसे ही हमारी बैटरी का पावर डाउन होने लगे कि तुरंत सोनगढ़ पहुंच जाते थे, निमित्त काई करतो नथी। समझ में आ गया, और वो गुरुदेव की जो वज्रवाणी कि निमित्त से कुछ नहीं होता, कार्य के काल में निमित्त होता है लेकिन निमित्त से कुछ होता नहीं है, इसीलिए उसका नाम निमित्त है कि उससे कुछ होता नहीं। ये सब बातें सिद्धांत है। तो अब यहां पर देखो कि अब ये जो उपादान, ये उपादान आया ना, कि ये उपादान है त्रिकाली उपादान, ठीक है। तो परम पारनामिक, परम देखो ये लगा पारनामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादान भूत, शुद्ध उपादान भूत, वहां पर क्या शब्द का प्रयोग किया था, देखो वहां शब्द का प्रयोग किया था निश्चय से कर्मों का अकारक अवेदक है, वैसा होता हुआ शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी क्या करता है जानादि, वो ये आया था ना शुद्ध उपादान रूप, वहां रूप आया था और यहां उपादान भूत, तो त्रिकाली की बात आई यहां पर कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध उपादान भूत, और फिर क्या शब्द का प्रयोग किया, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध द्रव्य अर्थी नय, टुकड़े करो इसके, शुद्ध द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, त्रिकाली द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, परम पारनामिक भाव स्वरूप द्रव्य स्वभाव ही है प्रयोजन जिसका, नित्य द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, सामान्य द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, है ना। और भी लेना हो तो ग्यायक भाव छठी गाथा, ग्यायक भाव ही है प्रयोजन जिसका, ग्यारहवीं गाथा के हिसाब से लेना हो तो भूतार्थ स्वभाव ही है प्रयोजन जिसका, ठीक है। उसको बोलते हैं शुद्ध द्रव्य अर्थिक नय, शुद्ध द्रव्य अर्थी माने जिस नए को, जिस नए का प्रयोजन, जिस नए का प्रयोजन शुद्ध द्रव्य को जानना है, ज्ञान का वो अंश, नए तो अंश ज्ञान का अंश होता है ना, तो ज्ञान का वो अंश कि जिसका प्रयोजन मात्र और मात्र शुद्ध द्रव्य को जानना है, गुण भेद हो लेकिन गुण भेद उसका विषय नहीं। पर्याय में अशुद्धता हो, पर्याय में विकार हो, पर्याय में निर्मलता हो, पर्याय में निर्मलता की वृद्धि हो, पर्याय में निर्मलता की पूर्णता हो, लेकिन इस नए का प्रयोजन इनको जानना नहीं है। अर्थात इस नए की दृष्टि में ये कोई चीज है ही नहीं। जानना प्रयोजन नहीं का मतलब क्या कि इस नए की दृष्टि से आप देखोगे और शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से आप पूछो, राग का, राग की जानकारी, राग के अभाव की जानकारी, तो वो कहेगा कि ना मैं राग को जानता हूं ना वीतरागता को जानता हूं, तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं तो वीतराग स्वभाव को जानता हूं, ना मैं मिथ्या दर्शन को जानता हूं ना मैं सम्य दर्शन को जानता हूं, मैं तो परम पारनामिक स्वभाव को जानता हूं। उसका उसका उस नए का प्रयोजन ही वो है। ठीक है, गुण भेद हो, पर्याय भेद हो, विकार हो, निर्विकार हो, विकार निर्विकार में शुद्धि की वृद्धि हो, शुद्धि की पूर्णता हो, सब हो, सब होंगे ये, लेकिन इस नए का ये प्रयोजन नहीं है, इस नए का ये विषय नहीं है, इस नए की परिधि में ये चीजें आती नहीं है। जब नहीं आती तो इस नए की अपेक्षा से इन सब को अवस्तु कह देते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से जीव कैसा है, तो कहा कर्तृत्व और भोक्तृत्व से, कर्तापना माने करना और भोक्तापना माने वेदन, वेदन करना, कर्ता और भोक्तापने से, यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व से, नंबर एक। अब आगे देखो कि बंध और मोक्ष के कारण, बंध और मोक्ष का कारण क्या, बंध का कारण मिथ्यात् अविरति प्रमाद कषाय और योग, अथवा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। ठीक है, और मोक्ष, मोक्ष का कारण क्या कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि ये जो इस नए की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व से तथा बंध मोक्ष के कारण, तो बंध का कारण मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, और मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और कारण और परिणाम, बंध का कारण प्लस बंध का परिणाम, मोक्ष का कारण प्लस मोक्ष का परिणाम, बंध का कारण और बंध रूप परिणाम, मोक्ष का कारण और मोक्ष रूप परिणाम से, क्या कह रहे हैं आगे, शून्य है। शून्य है क्या मतलब कि अरे जो अनादि अनंत मोक्ष स्वरूप है, अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है, तो अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है तो उसमें बंध का परिणाम और बंध का कारण नहीं है। ठीक है, और जिसको बंध नहीं है तो बंध पूर्वक होने वाला मोक्ष, बंध मार्ग पूर्वक होने वाला मोक्ष मार्ग, पूर्वक माने बंध का अभाव करके, बंध पूर्वक माने अगर बंध हो तभी तो बंध का अभाव होकर के मोक्ष होगा, बंध का कारण हो तभी तो बंध के कारणों का अभाव होकर के मोक्ष का कारण होगा। समझ में आ गया, तो जो बंधा ही नहीं, जिसमें बंध ही नहीं है उसमें मोक्ष का कहां सवाल है, जिसमें बंध के कारण ही नहीं है तो उसमें मोक्ष के कारणों का कहां सवाल है। मैं इसके लिए उदाहरण देता हूं कि किसी बाल ब्रह्मचारी जी से कोई पूछेगा आपकी बारात कहां गई थी, तो वो क्या कहेगा, क्या कहेगा कि जिनकी बारात जाती वो बाल ब्रह्मचारी नहीं होते, नेमिनाथ को छोड़ दो, एक अपवाद है वो कि बारात गई थी लेकिन बिना दुल्हन के आ गई थी वापस, और नेमिनाथ जी गिरनार चले गए थे, वो भी उंडाव सर्पणी का एक चमत्कार है। तो जैसे कोई बाल ब्रह्म किसी बाल ब्रह्मचारी से पूछे कि आपकी बारात कहां गई थी, अथवा इसी में एक उदाहरण दिया है आगे आने वाली चर्चा उसकी अपन करेंगे कि कोई आदमी आज तक जेल में नहीं गया और उससे कोई पूछे भाई साहब आप कब छूटे जी, आप कब छूटे, तो गुस्सा करता है। क्यों गुस्सा करता है भाई, अरे हम तो तेरे छूटने की बात कर रहे हैं। छूटना उसका होता है जो बंधा होता है। तो तुम मेरे छूटने की बात करते हो ना, तो भी तुम मेरे बंध की बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि छूटना बंध पूर्वक ही होता है। जो कभी बंधा नहीं हो वो कभी छूटता नहीं है। ऐसे ही परम पारनामिक भाव, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत, जो अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव है, जो सम्यक दर्शन का विषय है, दृष्टि का विषय है, ध्यान का ध्येय है कि वह तत्व कैसा है, तो आचार्य भगवान ने बहुत गजब की बात कही। बंध और मोक्ष के कारण और परिणाम से शून्य है। हाँ क्या? क्यों भैया? क्योंकि मैं तो मुक्त स्वरूप हूं। जो अनादि अनंत मुक्त स्वरूप है, अनादि अनंत मुक्त स्वरूप को कोई बांध नहीं सकता। और जब कोई बांध नहीं सकता अथवा बंधता नहीं तो उसकी मुक्ति भी नहीं होती। जीव तत्व न बंधा है और न जीव तत्व की मुक्ति होती है। पर्याय में बंध है और पर्याय में मोक्ष होता है, लेकिन मैं तो बंध और मोक्ष की पर्याय से अतीत हूं, बंध और मोक्ष की पर्याय से शून्य हूं। देखो एक अपना नियम सार परमागम है, उसमें 26 नंबर की गाथा है, गजब का है, अमृत पीना जैसा है। उसमें चर्चा है परमाणु की, और परमाणु की चर्चा में क्या है कि परमाणु की चर्चा में यह है कि परमाणु कभी भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता, अपने स्वभाव से स्खलित नहीं होता, ऐसी उसमें चर्चा आई। तो उसमें पता है उदाहरण काय का दिया, परमाणु अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव स्कंद में हो भले तो भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। इसको समझाने के लिए आचार्य भगवान ने जीव का उदाहरण दिया, और जीव के उदाहरण में उन्होंने क्या बात कही वो सुनो जरा। सहज शुद्ध निश्चय नय से, सहज परम पारनामिक भाव स्वरूप जीव है ना, तो कहते हैं नित्य निगोद से लेकर, क्या शब्द का प्रयोग किया, नित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत जीवों का स्वरूप से अच्युतपना बताया गया है। क्या मतलब कि नित्य निगोद की दशा हो अथवा सिद्ध दशा हो, नित्य निगोद की दशा माने बंध की अथवा औदयिक भाव की अथवा बंध भाव की सबसे निकृष्टतम दशा, उससे ज्यादा अशुद्धता कभी हो नहीं सकती। भाव कलंक की प्रचुरता जिसे बोलते हैं, कोमट सार बोलता है भाव कलंक की प्रचुरता है वो, उससे ज्यादा भाव कलंक कभी हो नहीं सकता। एक तरफ निगोदिया को खड़ा करो, निगोदिया जीव को रखा, दूसरी तरफ कहा कि नित्य, और वहां क्या शब्द का प्रयोग किया, नित्य अनित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत विद्यमान जीवों का, सिद्ध क्षेत्र पर्यंत माने सिद्ध दशा को प्राप्त, जो सिद्ध परमात्मा है ना, कि सिद्ध परमात्मा माने सिद्ध दशा से उत्कृष्ट जीव के विकास की कोई स्थिति नहीं। गुरुदेव श्री से पूछा कि साहब सिद्ध दशा में भी शुद्धि की वृद्धि तो होती होगी ना, कहां, 1980 के शुद्ध भाव अधिकार के प्रवचन सुन लेना, एक प्रश्न है, कारण कार्य नियम में भी है, तो उसमें यह बात आई, उसमें पूछा कि माने सिद्ध दशा के, माने सिद्ध दशा में भी तो सिद्ध भगवान को भी तो शुद्धि की, और उनमें और शुद्धि की वृद्धि होती होगी ना, हर समय शुद्धि की वृद्धि होती होगी ना, तो गुरुदेव बोले पर्याय के लिए यहां बस करो। क्या मतलब? कि पर्याय में शुद्धि की पूर्णता की दशा प्रकट हो गई, पर्याय के लिए यहां बस करो, द्रव्य के लिए हमें कुछ कहना नहीं है। यानी क्या मतलब? कि सिद्ध दशा की जो पर्याय है कि द्रव्य तो उससे अनंत गुणी सामर्थ्य का धारक है। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी अनंत पर्याय निकलती रहेगी और द्रव्य स्वभाव का खजाना कभी खाली नहीं होगा। एक समय की सिद्ध पर्याय की तेरे को क्या महिमा आती है, तू एक समय की सिद्ध दशा से भी कहीं अधिक है। क्यों? क्योंकि वो शुद्धता नई प्रकट हुई है, अशुद्धता का अभाव करके हुई है, कर्मों का अभाव करके हुई है। वो कर्मों का अभाव करके, अशुद्धता का अभाव करके नई शुद्धता प्रकट हुई है। समझ में आ गया? और द्रव्य स्वभाव कैसा है कि शुद्ध हुआ नहीं है, शुद्ध है, पवित्र हुआ नहीं है, पवित्र है, पूर्ण हुआ नहीं है, पूर्ण है ना। जब गुरुदेव से बोलते थे ना कोई लोग, तो गुरुदेव एक बहुत बढ़िया बात बोलते थे, बोलते थे हम तो पुराने दिगंबर हैं। क्या बोलते थे? कि दिगंबर इस भाव में, इस भाव की बात छोड़ो, कि हम तो पुराने दिगंबर हैं। कि पुराने दिगंबर है मन क्या है? हाँ, महाविदेह क्षेत्र से, कि हम तो तब के दिगंबर हैं, तुम सब तो नए दिगंबर हो, हम तो पुराने दिगंबर हैं। तो ऐसे कहते हैं कि ये मुक्ति की पर्याय, कि ये तो नई प्रकट हुई है। कहते हम तो पुराने सिद्ध हैं, हम तो पुराने मुक्त हैं। क्या मतलब? कि हम तो अनादि अनंत मुक्त हैं। ये तो अभी हुई, भले ही अनंत काल तक रहेगी, भले ही अनंत काल तक रहेगी, लेकिन नई प्रकट हुई है। नई प्रकट होकर के भले ही अनंत काल तक रहे, अशुद्धता बंद भले ही अनादि से है, लेकिन उसका अंत आ जाता है। जो अनादि से है और जिसका अंत आ जाता है, जिसका प्रारंभ होता है और जिसका अंत भले ही नहीं होता, लेकिन जिसका प्रारंभ होता है, इसको यूं समझो कि अनादि से है लेकिन अंत आ गया। कौन? बंद। भले ही अंत नहीं आएगा, लेकिन जिसकी शुरुआत हुई है, कौन? मुक्ति, है ना। तो जो अंत सहित हो अथवा जो शुरुआत सहित हो, कहते वो मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? कि मैं तो वो हूं कि जिसका ना तो कभी शुरुआत हुई है और ना तो कभी जिसका अंत होने वाला है। ऐसा अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य तत्व वो मैं हूं। सोचो आप, क्या गजब की बात है, है ना। इसलिए यहां पे कहते हैं भाई वो तो बंद, मैंने बहुत गजब की लाइनें हैं ये। क्या गजब की लाइनें? देखो फिर से पढ़ो, क्या कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से, उसके लिए भी ये याद करने जैसी बातें हैं ये। सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादान भूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व से तथा बंध मोक्ष के कारण और परिणाम से शून्य है। बंध मोक्ष का कारण और बंध मोक्ष का परिणाम उससे शून्य है। उसका कर्ता भोक्ता नहीं है। क्यों नहीं है? आगे हेतु देंगे, आगे लेंगे। पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। अभी हम भी, अरे भाई साहब हम तो निष्क्रिय हैं आजकल, हम तो निष्क्रिय हैं। क्यों निष्क्रिय हैं? इसलिए निष्क्रिय, कोई पूछता ही नहीं। हम इतना काम करे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, कोई पूछे ही नहीं हमको। हम काहे को अपनी सक्रियता बनाए रखें? कि ए, तुम्हारी निष्क्रियता तो द्वेष रूप है। समझ में आ गया? अभी लोग चढ़ा देंगे, खजूर पे चढ़ा देंगे तो वापस सक्रिय हो जाओगे। लेकिन ये ध्रुव तत्व ऐसा है कि बंद के परिणाम में, कोई कहे कि भाई बंद का परिणाम गंदा परिणाम है, उसमें आप नहीं आओ कोई बात नहीं, लेकिन मोक्ष का परिणाम तो पवित्र परिणाम है ना, वो तो पूर्ण पवित्र परिणाम है ना। तो पूर्ण पवित्र परिणाम में तो आपका आपको आना चाहिए। द्रव्य स्वभाव से कोई कहे तो द्रव्य स्वभाव की ओर से क्या उत्तर आएगा कि यदि बंद बंद की बात तो छोड़ो, यदि मुक्ति के परिणाम में भी मैं आ जाऊं तो अगले समय मेरी मौत है। क्यों मौत है? क्योंकि अगले समय यह मुक्ति मिटने वाली है, नई मुक्ति आएगी लेकिन यह मुक्ति मिटेगी। और यह बात भी आगे लेंगे, वो शुद्ध पारनामिक ध्येय रूप है, ध्यान रूप नहीं है, क्योंकि ध्यान विनश्वर है ना? बहुत गजब की बात है ये। देखो तो वो कह रहे हैं कि बंद मोक्ष के परिणाम से क्या हूं, तो कहते हैं बंद मोक्ष के परिणाम से मैं शून्य हूं, ऐसा सामुदाय पातनिका में कहा गया था। ये आचार्य देव के हिसाब से 320 नंबर की गाथा मोक्ष मार्ग की चूलिका है, मोक्ष अधिकार की चूलिका है, ठीक है। और अमृतचंद्र के हिसाब से 308 गाथा से सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार चालू हो जाता है। अब देखो, अब इसके बाद 308 नंबर की गाथा से 320 नंबर तक की गाथा का क्या विषय आया, उसको आचार्य देव जरा सा रिपीट कर रहे हैं। और फिर 320 नंबर की गाथा के बाद वो कहते हैं अब हम विशेष रूप से इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि जो बात जिस बात पर गुरुदेव श्री रिझे और गुरुदेव श्री ने अपन लोगों को ये इतनी बार 320 गाथा पर प्रवचन करके अपन लोगों को अमूल्य निधियां प्रदान की, वो इस बात पे है। देखो, पश्चात चार गाथाओं के द्वारा जीव का अकर्तत्व गुण के व्याख्यान की मुख्यता से सामान्य विवरण किया गया। चार गाथाएं कौन कौन सी? 308, 309, 310 और 311। इसमें जीव का अकर्तत्व गुण यानी जीव का अकर्तापना दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, ये बात आई थी ना। और इसमें से अपन ने कहा था, चर्चा करी थी, शुरू के दिन चर्चा की थी कि इस चार गाथाओं के आधार पर पूज्य गुरुदेव श्री ने एक महामंगलमय सिद्धांत अपन लोगों को दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? कि क्रमबद्ध पर्याय का वो सिद्धांत कि जो गुरुदेव को श्रुत की लब्धि थी, बहन श्री के शब्दों में कहें श्रुत की लब्धि थी, इस बात को ये गाथा सिद्ध करती है कि एक शब्द आया था। क्या शब्द आया था? क्रम नियमित। और एक शब्द में से इतना गजब का, इतना गहरा सिद्धांत कि जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। पूरी दुनिया हिल गई, खलबली मच गई, है ना। और जो लोग आज तक सर्वज्ञता में किसी प्रकार की शंका नहीं करते थे, आज तक जिनको सर्वज्ञता संपूर्ण रूप से मान्य थी कि तीन काल तीन लोक को जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा होते हैं, सर्व द्रव्य गुण पर्यायेषु केवलस्य, ऐसे न्याय शास्त्र के पाठी विद्वान भी सर्वज्ञता के अंदर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। क्यों? उनको लगता था यदि हमने सर्वज्ञ का ऐसा स्वरूप स्वीकार कर लिया तो क्या होगा कि कांजी स्वामी की क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध हो जाएगी, ये डर लगता था लोग। तो मैंने कहा भाई तुमने तो ऐसा काम किया कि मुझे पड़ोसी की दोनों फोड़नी है चाहे मेरी एक फूट जाए, किसी को वरदान मिला क्या कि तुम दूसरों का जितना करोगे उसका आधा तुमको मिलेगा। तो फिर क्या करा कि साहब मुझे इस पड़ोसी की दोनों आंखें फोड़नी है। नहीं नहीं सुनो तो, कि मुझे पड़ोसी की दोनों आंखें फोड़नी, कहा फोड़ दो, क्या होगा कि एक तुम्हारी फूटेगी। हमने कहा था जितना उसको दोगे उसका आधा तुमको मिलेगा। तो अभी लोगों ने क्या किया, कांजी स्वामी की क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध नहीं होना चाहिए, कुछ भी करना पड़े। समझ में आ गया? वहां दोनों फोड़ने के चक्कर में एक फोड़ ली अपनी। तो हुआ क्या पता है? शकुन शास्त्र ये कहता है कि अंधा व्यक्ति मिल जाए तो शकुन खराब नहीं होता, और काना व्यक्ति मिल जाए, बस समझ लेना, थोड़ी कई बहुत में समझ लेना, है ना, कि गुरुदेव श्री का तो कुछ नहीं बिगड़ा तुम कितना ही क्रमबद्ध पर्याय का निषेध करते जाओ, तुम कितने ही सिद्धांतों का निषेध करते जाओ, क्यों? क्योंकि वे गुरुदेव के सिद्धांत नहीं थे, वे अनंत तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत थे और अनंत तीर्थंकरों के मुक्ति दूत के रूप में वर्तमान में पूज्य गुरुदेव पधारे थे। ये समझ लेना, वो उनका उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और उनके द्वारा प्रतिपादित एक भी सिद्धांत में अगर प्रश्न चिन्ह लगाया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिछने वाला है, ये समझ लेना। तो ये आचार्य भगवान ने कहा और वो चार गाथाओं के द्वारा अकर्तृत्व गुण की चर्चा करी। उसके बाद क्या हुआ, अकर्तृत्व गुण की सामान्य विवरण किया गया। तत्पश्चात ये अपन विवरण पढ़ लेते हैं फिर बाकी की चर्चा हो जाएगी। पर तत्पश्चात चार गाथाओं के द्वारा शुद्ध को भी जो प्रकृति के साथ बंध होता है वह अज्ञान का महात्म्य है। भगवान आत्मा शुद्ध, अरे शुद्ध को भी बंध, ये तो गजब हो गया, पानी में आग लग गई। अरे पेट्रोल में आग लगना तो सुना था हमने, लेकिन ये तो पानी में आग लगी। शुद्ध को भी बंध, इसी का नाम तो अज्ञान का महात्म्य है। ये अज्ञान की महिमा है कि शुद्ध होने पर भी शुद्ध को बंध, माने शुद्ध है ऐसा स्वीकार नहीं किया। इस अज्ञान की वजह से प्रकृति का बंध होता है, यह अज्ञान का महात्म्य है। ऐसा अज्ञान का सामर्थ्य कहने रूप विशेष विवरण किया गया। तो अज्ञान का सामर्थ्य काय के लिए बताया था, अज्ञान में रहने के लिए या अज्ञान को मिटाने के लिए? पंडित टोडरमल जी ने लिखा मोह की महिमा। तो महिमा का मतलब क्या, वहां पे महिमा करने योग्य? कि देखो मोह की महिमा, क्या गजब की महिमा मोह की, कि सब जो प्रत्यक्ष दिखता है वो नहीं मानता है ना, और जो है नहीं वो मानता है, गजब है मोह की महिमा। इतना मोह में गापिल है, ये मोह की महिमा करके उसका महत्व नहीं बताना है, व्यंग किया है वो। जैसे अपन कहते हैं देखो भाई साहब की इनकी कर्स्थानी, देखो इनकी करतूत, देखो इनके कार्य, तो वो कोई उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे। तो यहां अज्ञान का महात्म्य की बात करी चार गाथाओं के द्वारा, जीव का उसके बाद किया गया कि तत्पश्चात चार गाथाओं के द्वारा अभोक्तृत्व गुण के व्याख्यान की मुख्यता से व्याख्यान किया गया। और तत्पश्चात दो गाथाएं कही गई जिनके द्वारा पहले 12 गाथाओं में शुद्ध निश्चय नहीं से कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभाव रूप तथा बंद मोक्ष के कारण एवं परिणाम के अभाव रूप जो व्याख्यान किया गया था उसी का उपसंहार किया गया। ये 19 और 20 नंबर की गाथा, 319-320। इस प्रकार समय सार की, अब देखो आचार्य देव ने क्या नाम लिखा, समय सार की शुद्धात्मानुभूति लक्षण, क्या कहा पूरा करता हूं ना, शुद्धात्मानुभूति लक्षण तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में मोक्षाधिकार संबंधी चूलिका समाप्त हुई, अथवा अन्य प्रकार से व्याख्यान करने पर यहां मोक्ष अधिकार पूरा होता है। जैसे आचार्य के हिसाब से मोक्ष अधिकार 320 गाथा में पूरा होता है। अब जिस बात के लिए ये 320 गाथा प्रसिद्ध है वो वर्णन यहां से शुरू होता है ना। फिर विशेष कहा जाता है, अब ये जो विशेष कहा जाता है, जो सारा चमत्कार है, जो 320 गाथा जिसको बोला जाता है, सचमुच में 320 गाथा के बाद आचार्य देव ने अपनी एक टिप्पणी दी, विशेष कहकर के एक टिप्पणी दी, उसको 320 गाथा की टीका के नाम से जाना जाता है। और ये वो टीका की आगे के वो अंश हैं कि जिन अंशों पर गुरुदेव श्री ने अत्यंत प्रमुदित होकर अपने को प्रवचन प्रदान किए। तो ये जो अपनी बाकी के जो अपने अष्टानिका के दिन हैं, तो इन पर अपन अपनी चर्चा और आगे बढ़ाएंगे, बहुत विस्तार के साथ में इसमें बात आई है।
सहजानंदे सोदस्वरूपी अविनाशे हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदे सोदस्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजा नंदीशो दशरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजा नंदीशो दशरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजा नंदीशो दशरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। अष्टकर्म क्षय करी, अष्टगुण ने प्राप्त करी, लोकाग्रह विराजमान वर्तमान चौबीसी अशरीरी सिद्ध दशा ने प्राप्त रुष्पादी मार्ग पर चौबीस जिनेन्द्र भगवान नोम जय हो। चार घाते कर्म क्षय करी, अर्यन पद ने प्राप्त केवल ज्ञान कल्याणक से शोभित विजय क्षेत्र में विद्यमान सीमंद्र आदि अजित वीर पर्यत विश्वरमन जिनेन्द्र भगवान नोम जय हो। अद्य दिन मंदिर में जैवनपण विराजमान वर्तमान अवसर पीने समय ध्रुवधाम की धक्तिधुनी दखावना अखंड साधना प्रतीक श्री बाहुबली मनीन्द्र भगवान नो जय हो। जीन मुखोद्भवित परम वितराक स्वदाता नित्य बोधक परमागम समयसार प्रवचनसार आदि समस्त जिनवाणी मात नोम जय हो। जिनवाणी माताए बतावेला मार्ग पर आरूढ़ थे थका शुद्धोपयोगधारी भावलिंगी संत हालता चालता शीतम भगवान श्री कुंकुंद आचार्य देव नो जय हो। लाखों करोड़ों भक्तों तारणहार अनंत अनंत उपकारी प्रातस्मरणी श्री कहान गुरु देवनो जय हो। स्वानुभव विभूषित प्रसमृति धन्योत्तर पूज्य भगवती महातनो जय हो। अमूल्य तत्वना विचारक आत्मसिद्धिना प्रदाता परम कृपाओ देव आदि समस्त ज्ञानी धर्मात्मा संतोनो जय हो। शाश्वत पर्व अष्टानिका पर्वनो जय हो। श्री परम वितराक सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। बोलो द्वादशांगी समस्त जिनवाणी मातनों जय हो। रात्रि नो कार्यक्रम यथावत रहे से।